मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 27 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं पप्पू कुमार यादव, आपका गांव है जुरखा, जिला समस्तीपुर बिहार, और जलज श्रीवास्तव, आप इलाहाबाद से हैं। तो पप्पू और जलज, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत के बाद मित्रों, मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा सत्येंद्र सिंह को, जो हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने सूचित किया है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है और उसमें उन्होंने फाइनली सफलता हासिल कर ली है। तो सत्येंद्र, हम सबकी ओर से इस सफलता के लिए तुम आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य की और भी बेहतर सफलताओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि सामान्यतया जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मिलते हैं और मेरे पास मेल भी आते हैं तो उनकी एक तरीके से यह धारणा बन गई है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। बहुत कम क्या, नहीं के बराबर सेलेक्ट होते हैं, इक्के दुक्के सेलेक्ट होते हैं और अंग्रेजी वालों को कोई प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें ऐसा लगता है बातचीत करने से कि जरूरी है सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के लिए कि आपका मीडियम अंग्रेजी हुआ। देखिए, हमारी धारणा है, सच हो या गलत हो, लेकिन अगर धारणा है तो डेफिनेटली वो हमारे विकास को बाधित करती है क्योंकि हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती है तो हम सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। इसकी सच्चाई को बताने के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं यथार्थवादी तरीके से अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं। तो दोस्तों, YouTube पर एक प्रोग्राम डाला गया है, और मैं आप सबको ये सूचना देना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह का भ्रम है और आप अपने भ्रम से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप YouTube पर उपलब्ध उस प्रोग्राम को एक बार देखें। AFEIS में आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट प्रोग्राम है। उस पर फिर विचार करें और उसकी सच्चाई को जानें कि सच्चाई इनफैक्ट क्या है, क्योंकि हमारी जो धारणाएं हैं उनका स्पष्ट होना बहुत जरूरी होता है और खासकर तब तो बहुत ही जरूरी होता है यदि हम कोई बड़े काम के लिए अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो, क्योंकि वहां छोटी छोटी बाधाएं भी बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर सकती हैं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम प्रश्नों की समझ पर बात करेंगे, प्रश्नों की समझ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्नों की समझ पर यह हमारा अंतिम एपिसोड है। अगले वीक से हम प्रश्नों की समझ पर बात नहीं करेंगे और आपको मालूम है कि सोमवार के दिन हम लोग अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पर बातें करते हैं। तो मैं आप सबकी समस्याएं आमंत्रित करता हूं कि आप मुझे मेल के जरिए बताएं कि अगले सप्ताह से आप किस विषय की तैयारी, प्रिपरेशन, सिविल सर्विस के किस एंगल के बारे में आप सुनना जानना चाहेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों में से बहुत लोग सुझाते हैं और कई कई विषय सुझाते हैं, सभी विषयों को शामिल करना मेरे लिए संभव नहीं होता, लेकिन कोशिश होती है कि मैं जवाब सबके दे पाऊं। बहुत से उनमें से ऐसे विषय होते हैं जिनके जवाब मैं पहले दे चुका होता हूं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मेरे ऑलरेडी आप कह लीजिए कि वेटिंग लिस्ट में होते हैं, तो आप लोग ये मत समझें कि उसका कोई फायदा नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डेफिनेटली उसका फायदा होता है और कम से कम मुझे तो आप सब रास्ता दिखाते ही है न कि मुझे इस इश्यू पर बात करनी चाहिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। तो दोस्तों, इससे पहले के मुख्य विषय पर आए, थोड़ी सी न्यूज एनालिसिस को देख लेते हैं और आज न्यूज एनालिसिस में कोई खास बात है नहीं, जैसा कि हर सोमवार को सामान्यतया होता है। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी मन की बात राष्ट्र से अब शेयर करते हैं। प्रोग्राम का नाम ही है मन की बात, जो रेडियो पर आता है और फिर चैनल्स पर भी आता है। मैं सजेस्ट करूंगा मित्रों, इससे पहले भी मैं आप सबसे कह चुका हूं कि आपको यह प्रोग्राम सुनना चाहिए, मन की बात। देखिए, दूसरे लोग चाहे जो कुछ भी कहें, राजनीतिक विश्लेषण इसका अलग तरीके से हो सकता है, इसके क्या उद्देश्य हैं आप उस पर मत जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मन की बात है, कहने वाले व्यक्ति कौन है। हमें इतना तो तटस्थ होकर के चीजों को देखना ही पड़ेगा, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो। जो मन की बात जो कर रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रमुख हैं, कार्यकारी प्रमुख हैं। चलिए उस तरह से राष्ट्रपति होते हैं लेकिन कार्यकारी प्रमुख हैं। तो एक महीने के अंदर उन्हें जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लगते हैं, बट नेचुरल है कि वो उन्हें समेट कर राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करते हैं। और वो उसे कौन प्रस्तुत कर रहा है? प्रधानमंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम मन की बात सुनते हैं तो ये मानकर चलिए कि वो जिन इश्यूज को उठा रहे हैं वो बड़े इश्यू हैं, राष्ट्रीय स्तर की वो समस्याएं हैं जिन पर वो देश का और यहां तक कि दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, चाहे वो हमारी कमियां हों, चाहे वो हमारी उपलब्धियां हों, चाहे वो हमारी समस्याएं हों। तो इसको सुनने के बाद ठीक है, ये सीधे सीधे यहां से कोई चीज उठा करके आप एग्जाम में शायद लिखने के लिए न पाए, लेकिन आपको टॉपिक मिलेंगे, यहां से आपको टॉपिक मिलेंगे कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कल जो मन की बात प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया है उसके अंतर्गत, उसमें देखिए दो टॉपिक आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ठोस रूप में प्राप्त होते हैं। पहला है दुष्कर्म। दुष्कर्म को लेकर के उन्होंने कहा कि किस तरीके से संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, संशोधन एक्ट लाया गया है और उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, बकायदे एक्ट में संशोधन किया गया है और इस पर हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह टॉपिक ऐसा है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में शामिल हो जाना चाहिए, एज फार एज अभी जो मेन्स एग्जामिनेशन है उसका जहां तक संबंध है। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरी बात कही, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद तीसरी जो उन्होंने खास बात कही थी वो तीन तलाक के मामले को लेकर के, कि अभी वो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका लेकिन उन्होंने एश्योर किया है, यानी कि मुस्लिम समाज में जो महिलाओं को समानता की स्थिति प्राप्त नहीं है, यह भी सिविल सर्विस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कि चलिए मुस्लिम महिलाओं से संबंधित सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, महिलाओं की समानता से संबंधित पूछा जाता है, तो कम से कम जब आप उसका उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें आपको मुस्लिम महिलाओं को अलग से उल्लेख करते हुए एक तुलनात्मक वाक्य लिखना चाहिए कि उनकी स्थिति दूसरे समाजों की स्थिति की तुलना में कुछ ज्यादा ही खराब है, और उसके पीछे है तीन तलाक का मामला और तलाक हलाला जो होता है उसका, निकाह हलाला उसका जो मामला होता है। तो इस तरीके से जब आप चीजों को देखना सुनना और समझना शुरू करेंगे तो आपके सिविल सर्विस की जो तैयारी है आप देखिए कि ऑटोमेटिक होती चली जाएगी और बड़े ठोस तरीके से होती चली जाएगी। तो मित्रों, जो मन की बात है, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस तैयारी कर जब तक आप कर रहे हैं तब तक इसे एक महत्वपूर्ण आपको एक ऑडियो डॉक्यूमेंट मानकर चलना चाहिए। मित्रों, आइए अब मुख्य विषय पर आता हूं, और आज के मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग मेंस का जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है एथिक्स वाला, उस पर बातें करेंगे। आप एथिक्स का पेपर उठा करके देखिए, अनसॉल्व्ड पेपर। तो एक अच्छी बात है कि एथिक्स का जो पेपर होता है, यानी कि जो फोर्थ पेपर होता है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट तरीके के होते हैं, बहुत उलझाने वाले प्रश्न नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो प्रश्न होते हैं, मतलब ये आप बिल्कुल आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये इस पेपर का करैक्टर है, चरित्र है, उलझाने वाले ज्यादा नहीं होते। दूसरा इसका जो करैक्टर है वो ये है कि जो आपसे डिमांड की जाती है कि जो आप उत्तर लिखेंगे उसमें अपेक्षा आपसे की जाती है कि आप अपनी तरफ से लिखेंगे, ये नहीं कि उसने ये कहा किताबों में ये लिखा गया है, नॉट एट ऑल। आप इस दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए उस पेपर को, तो उसमें आपके से अपेक्षा की जाती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे, आप बताइए क्या किया जा रहा है, उस पर इसका ज्यादा जोर नहीं है। जबकि हमारे इससे पहले के जो तीन पेपर हैं उसमें यही है ना कि क्या किया जा रहा है, इसके बाद फिर पूछ देते हैं कि आप क्या करेंगे, कुछ और उसमें उपाय बताइए, लेकिन इसमें ज्यादातर यह होता है कि आप क्या करेंगे। तीसरा जो चरित्र है इस पेपर का वो ये है कि अक्सर आप देखिए कि प्रश्नों के साथ जो करेंट आपके इवेंट्स हैं उनकी जानकारी मांगी जाती है कि आप उदाहरण देकर समझाइए, मतलब अभी जो घटनाएं घट रही हैं उनके आधार पर अपनी बात कहिए, समकालीन समय के उदाहरण द्वारा समझाइए। इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस विषय से संबंधित जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, वो आपके दिमाग में रच बस जाने चाहिए। मतलब पूरा सिलेबस, वैसे तो सिलेबस आपको सभी पेपर के याद होने चाहिए, आपके दिमाग में मौजूद होने चाहिए, ताकि जब भी आप अखबार पढ़ें, मैगजीन पढ़ें या न्यूज सुने तो पता लग जाए कि अरे अरे ये तो मेरे सिलेबस का हिस्सा है। और फोर्थ पेपर में तो खासकर, क्योंकि समाज में, राज्य में, इस दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, मान के चलिए कि उनका संबंध आपका जो फोर्थ पेपर है उसके किसी न किसी पॉइंट से है, उनसे परे नहीं है, क्योंकि वो जीवन ही है ना, जीवन है। और इसमें जीवन को बड़े विशाल तरीके से देखने की कोशिश की गई है। भले ही आपका सिलेबस छोटा सा हो, लेकिन उसमें पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कह लीजिए कि जीवन समाया हुआ है, और सिविल सर्वेंट का तो समाया ही हुआ है, और आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो इससे होगा ये कि आपके दिमाग में जो करेंट इवेंट है वो आते चले जाएंगे और फिर आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकेंगे। तो दोस्तों, ये इस फोर्थ पेपर के कुछ चरित्र हैं जो थोड़े से इनडायरेक्ट जैसे प्रश्न हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से। उसमें करते क्या है कि सामान्यतः ये तो सेकेंड और थर्ड पेपर में भी आपने देखा है कि वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई कथन होता है, और उस कथन के बारे में फिर आपसे कह देते हैं कि या तो चर्चा कीजिए, या इसे समझाइए, या इसका औचित्य सिद्ध कीजिए। इस तरीके से वो पूछते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इस तरह की शब्दावली आपको फोर्थ पेपर में नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट नेचर के होते हैं, जो कथन के आधार पर पूछते हैं। आइए मैं आपको दो प्रश्न पढ़कर सुनाता हूं, इससे आपको मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी, और साथ ही यह भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इसके जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं होते, वो ज्यादा भूल भुलैया में आपको भटकाते नहीं है। लेटेस्ट जो आपके 2017 का जो एग्जाम हुआ है उसी का ये फोर्थ पेपर है, और फोर्थ पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें ए और बी करके दो प्रश्न पूछे गए हैं, और 150-150 शब्दों में आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और दोनों के लिए 10-10 नंबर असाइन किए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न ए क्या है, अनुशासन में सामान्यतया आदेश पालन और अधीनता निहित है, फिर भी यह संगठन के लिए प्रति उत्पादक हो सकता है, चर्चा कीजिए। राइट, इंग्लिश में पढ़ देता हूं, डिसिप्लिन जनरली एम्प्लाइज फॉलोइंग द ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन, हाउएवर इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस। मतलब देखिए, अनुशासन आप देखिए कि बकायदे अनुशासन आपके सिलेबस में है, तो ये कह रहे हैं कि अनुशासन का मतलब क्या है। देखिए, आप सीनियर हैं तो बट नेचुरल है कि जो जूनियर है, या आप कह लीजिए कि आप जिस लेवल पर हैं और आपके कोई सीनियर है, तो सीनियर जो कह रहा है उसका उसके आप आदेश का पालन कीजिए और उनका सब ऑर्डिनेशन स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो सीनियर है। तो ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, अनुशासन तो किसी भी संगठन के लिए जरूरी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस संगठन के इससे नुकसान होता हो। जैसे मान लीजिए कि आपके सीनियर हैं और सीनियर कोई गलत बात आपसे कह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई गलत काम करने के लिए कह रहे हैं, वो उस चीज को उस रूप में समझ नहीं पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको उनके आदेश का पालन करना है, तो उससे संगठन का नुकसान हो सकता है। ठीक इसी तरह से अधीनता, अधीनता का मतलब यही है कि वो भी जो भी कह रहे हैं आपको उनकी बात मानते चली जाने, और भी अधीनता में ढेर सारी चीजें आ जाती हैं, तो इससे संगठन के लिए नुकसान भी हो सकता है, बस इसे आपको स्पष्ट करना है। इसके बी को देख लीजिए, सामान्यतः साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना न तो कानून, न तो लोकतंत्रीय सरकार, न ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगे। इस कथन से आप क्या समझते हैं, समकालीन समय के उदाहरण द्वारा समझाइए। आप देख रहे हैं समकालीन समय के, इंग्लिश में है विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली इंट्रेंस्ड मोरल वैल्यूज एंड obligations, neither the law nor democratic government nor even the market economy will function properly. What do you understand by this statement? Explain with illustrations in the contemporary times. देख रहे हैं? इसमें देखिए कि इन्होंने कुछ चीजें दे दी. कहना वो ये चाह रहे हैं कि जो भी आप निर्णय लेते हैं या नैतिक मूल्य स्थापित करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बहुत जरूरी है कि उनके बारे में लोगों से बातचीत करें. बातचीत करने के बाद फिर इनका निर्धारण करें, क्योंकि अगर बिना बातचीत किए अगर आप अपनी तरफ से कोई कानून बना देंगे, कोई सिस्टम बना देंगे, तो चाहे वो सरकार डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो या इकोनॉमी मार्केट क्यों ना हो, यहां जहां पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा है, वो काम नहीं कर सकेंगे. यानी कि लोगों की राय को शामिल किया जाना जरूरी है, बस ये कहना चाह रहे हैं. आप इससे कहां तक सहमत हैं? तो असहमति की तो कोई बात नहीं है. अगर मैं असहमति दिखाता हूं तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि डिक्टेटरशिप की तरफ मैं जा रहा हूं या राजतंत्र की तरफ जा रहा हूं, तो ज्यादातर स्टूडेंट तो इसके प्रति सहमति ही दिखाएंगे. और इसके बाद फिर आपको समकालीन उदाहरण देकर के उसे स्पष्ट कर देना है. तो मित्रों, ये मैंने आपको फोर्थ पेपर के जो प्रश्न है उनके समझ के बारे में कुछ बातें बताई हैं. और जैसा कि मैंने कहा कि अब प्रश्नों की समझ वाले एपिसोड को इसी के साथ ही हम लोग समाप्त करते हैं. आगे आप लोग अपने विषय सुझाइए ताकि उन विषयों पर आगे बात की जा सके. न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब उसे अपने अपने ढंग से देख लीजिएगा. थोड़ी सी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं. सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं डायमंड, शिवम राम, श्रुति सिंह, सूरज पाल, शुभम कुमार, नितिन कुमार अमरोहा उत्तर प्रदेश से, रोहित राज, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, सलमा खान, सोनाली, धनंजय कुमार आरा से, विनय मौर्य दिल्ली से, और सचिन अड़गांवकर अकोला महाराष्ट्र से. आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं. नमस्कार.